संध्या अक्षित के साथ सब अनजान थे कि देव उनकी जिंदगी में वापस आ चुका है। देव ऐसा ग्रहण था संध्या की जिंदगी पर जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना रही थी, पर अब संध्या अक्षित के साथ अपने बेहद इश्क के संग, परिवार, बच्चों के संग इतनी खुश थी कि किसी चीज की कमी नहीं थी। पर गम के बादल जल्द ही उसकी जिंदगी पर छाने वाले थे। देव दीक्षित नाम के ग्रहण की बुरी छाया फिर उनकी जिंदगी पर पड़ने वाली थी। ऐसा तूफान बनकर आने वाला था देव जो सब तबाह कर देगा। पर तूफान से आने की पहले की शांति, उस खामोशी को संध्या नहीं समझ पा रही थी। वो अपनी दुनिया अक्षित के साथ मग्न थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और उन्हें खबर न थी कि देव उन पर नजर रखे हुए है। देव ने अपना ऐसा लुक बना लिया था कि कोई ना पहचान सके। कहूं तो बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बालों को पीछे की तरफ बांधा, ब्लैक पजामा कुर्ता, और तो और जो पहचान सके उनकी नजरों से खुद को बचाकर रख रहा था। पर पहचान पाए कोई, ऐसा भी कहां पॉसिबल था। दुनिया के लिए वो मर गया, अब उसे सिर्फ संध्या चाहिए। तो भाड़ में जाए उसके लिए पूरी दुनिया, लौट सके, पा सके अपनी संध्या को। इसके लिए ही तो उसने खुद को मरा साबित कर दिया, और ऐसी साजिश रची तो सफल भी हुई। जानने वाले तो भूल भी गए देव को, और तो और जो लाश देव की मिली थी, जिसे देव की लाश कहा गया था, ऐसी हालत में थी कि कुछ भी पहचान में न आया कि असली में वो देव की ही थी या किसी और की। वाकई में वो जगह खतरनाक थी, बच पाना मुश्किल था, पर देव की किस्मत ने साथ दिया और वो बच गया। उसने खुद को ऐसे छुपाया, ना पुलिस ढूंढ पाई और ना जंगली जानवरों के मुंह लगा, और वहां से निकलकर ऐसी जगह चला गया जहां उस तक कोई ना पहुंच सके, और सब ठंडा शांत होने पर लौट आए। देव ने अपने सामने किसी पर उस रात जंगली जानवरों को टूटते देख लिया था, मारते देख लिया था, इसलिए उसने अपना बचाव हर हालत में कर लिया। और देव की भाषा में बोले तो उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, भगवान भी नहीं मार सकते हैं उसे। देव को खुद पर इतना अभिमान था कि उस घमंड को वो अपनी ताकत मानकर बच निकला। यहाँ तक कि कई महीनों तक अक्षित ने बिना संध्या को बताए किसी को पता बिना तहकीकात भी करवाई देव के केस की, पर देव की साजिश के सामने किसी की न चली। आखिरकार अक्षित ने भी देव को मरा हुआ मान लिया। पर अब जब देव का सामना होगा अक्षित संध्या से तो क्या होगा? जिस राक्षस की मौत पर दोनों को सुकून मिला था वो वापस उनकी जिंदगी में टपक पड़ा। कदम रख लिए देव ने, और अब उसका मकसद था तो सिर्फ अक्षित की तबाही, संध्या को पाना बस, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। और जिसके चलते उसने संध्या अक्षित के घर से लेकर उसके ऑफिस तक नजर रखनी भी शुरू कर दी थी। दिवाली के दो दिन बाद पार्क एरिया में खड़ा पेड़ के पीछे सबसे खुद को छुपाए देव संध्या के घर पर नजर लगाए हुए था। घर की ओर देखते देव खुद से कहता है, चलो इस अक्षित का एड्रेस ढूंढने में ज्यादा मुश्किल ना हुई, यही मिल गया घर जहां पहले थे। इतना बड़ा बिजनेस बन गया साला, पर आज भी वही। खैर, पर देव बेटा, कुछ भी करने से पहले या तू जो चाहता है उससे पहले तुझे इस अक्षित की जन्म कुंडली तो निकालनी होगी ना, सब पता करना होगा। मैं तड़पा हूँ तो इसे भी तो तड़प तड़प के मरना होगा। मुझसे मेरा सब कुछ छीना, इससे भी तो छीनना होगा। सजा तो देनी होगी इस अक्षित को। और फिर हाय मैं और मेरा प्यार, हम देव संध्या जियेंगे अपनी लाइफ। तू कांटा है जो यार मुझे बहुत चुभता है, पर शुरुआत तुझसे नहीं तेरे अपनों से करूंगा। तूने भी मेरी अपनी जिस पर मेरा हक था उसे छीना, तो मैं तुझे और तेरे अपनों को कैसे बख्श दूं। देव दीक्षित नाम है मेरा, सब सोच समेट लौटाऊंगा, तैयार हो जाओ बिकॉज आई एम बैक। सुबह का ही टाइम था जब देव संध्या के घर की तरफ देख रहा होता है, तभी अक्षु के साथ अक्षित बाहर आया। साथ संध्या भी थी जिसने अक्षी को गोद में लिए हुए था। संध्या को देख देव बहुत खुश होता है। देव का मन था इसी वक्त जाकर संध्या के गले जाए, पर देव खुद को रोकते हुए कहता है, कंट्रोल देव, मिलन होगा बट अभी थोड़ा इंतजार। तभी अक्षु गाड़ी में बैठते हुए हाथ हिलाकर कहता है, बाय अक्षी, बाय मम्मा। संध्या, बाय अक्षु। और अक्षी का हाथ खुद हिलाते हुए, भाई को बाय बोलो। अक्षु अक्षी की ओर मुस्कुराते हुए फ्लाई किस करता है। ये देखकर अक्षित संध्या दोनों हंसते हैं। अक्षित संध्या के गाल पर हाथ रखकर, अच्छा तो मैं निकलूं, अक्षु को स्कूल छोड़कर मीटिंग के लिए भी जाना है, अब तो अकेले ही सब देखना पड़ रहा है ऑफिस में। बस हमारी अक्षी बड़ी हो जाए थोड़ी और, फिर मैं घर से ऑफिस का काम नहीं, ऑफिस जाकर ही काम करूंगी, डोंट वरी। अरे मजाक कर रहा हूँ, आई हैंडल और सब मैनेज हो रहा है, इट्स ओके। हाँ भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर जो ठहरे कैसे मैनेज ना हो, हंसते हुए ये सुनकर अक्षित बोला, तुम भी कम नहीं हो मिसेस सक्सेना। और दोनों हंसते हैं। तभी अक्षित पूछता है, अक्षी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जा रहा है? संध्या, मॉम डैड। तुम्हें तो पता है मॉम डैड ही करवा सकते हैं इंजेक्शन, हम जाएंगे तो बाधा ही बनेंगे, इंजेक्शन जरूरी है तो मॉम डैड ने कहा कि अक्षित ऑफिस जाओ, अक्षु स्कूल जाओ और संध्या तुम घर पर रहो। सही है, इंजेक्शन जरूरी है और हम खुद के लगवा सकते हैं, पर अपने बच्चों को सुई चुभते नहीं देख सकते हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ पता है, तभी तुझे हमेशा इंजेक्शन लगने के टाइम, चाहे अक्षु हो या अक्षी, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गई। ज्यादा मत बनो, मॉम के साथ अक्षु के टाइम भले ही तुम जाती थी, बाहर खड़ी रहती थी, पर अक्षी को पिछली बार जो इंजेक्शन लगा उस टाइम तुमने जो तमाशा किया हॉस्पिटल में, उसके बाद तुम्हारा जाना भी मना है। हाँ तो नहीं देखा गया, ये इंजेक्शन से पहले ही रोने लगी, तो मैं बिना इंजेक्शन लगवाई ले आई और फिर मॉम से डांट सुनी। वैसे ठीक है, नहीं जा रही मैं, नहीं देखा जाता रोते, वो भी इतना सारा, मॉम डैड ही चले जाएंगे। हाँ जरूरी भी है। तभी अक्षु ने आवाज दी, डैड चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। क्रमशः